अध्याय तीन। प्रथम अफीम युद्ध 1840 से 1842 ईस्वी। फर्स्ट ओपियम वार 1842। यह अध्याय अनीता नारायण, जो माता सुंदरी कॉलेज नई दिल्ली की प्राध्यापिका है, उनके द्वारा लिखी गई है। सुदूर पूर्व के इतिहास में अफीम युद्ध सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। यह आंग्ल चीनी संघर्ष परंपरावादी तथा आधुनिक चीन के बीच के संक्रमण काल की घटना थी। इस युद्ध में चीन की पराजय हुई तथा उसके ऊपर एक अपमानजनक संधि थोप दी गई, जो संधिगत बंदरगाह प्रणाली। इस संधि के फलस्वरूप उभरी वह चीन को पश्चिमी साम्राज्यवाद का शिकार बनाने की प्रक्रिया का प्रारंभ था। अफीम युद्ध 1840 से 1842 ईस्वी के कारणों के विषय में तीन विभिन्न मत व्यक्त किए गए हैं। 1850 ईस्वी में न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखे लेखों के द्वारा कार्ल मार्क्स ने यह अभिव्यक्त किया है कि यह युद्ध अफीम के आयात के कारण ही हुआ था। इसी कारण व्यापक रूप से इसे अफीम युद्ध की संज्ञा दी गई है। पुराने चीनी अमेरिकी संबंधों के विशेषज्ञ जॉन किंग फेयरबैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अफीम इस युद्ध का तत्कालिक कारण था, न कि वास्तविक कारण। इस लेखक का मत है कि युद्ध का वास्तविक कारण दो विभिन्न संस्कृतियों, पूर्वी तथा पाश्चात्य, के बीच टकराव था। तीसरी अभिव्यक्ति माइकल ग्रीनबर्ग के द्वारा की गई थी। उनका यह कथन है कि अंग्रेज चीन को विश्व के स्वतंत्र व्यापार के लिए खुलवाना चाहते थे। पिछली दो अभिव्यक्तियों ने युद्ध में अफीम के स्थान को एक महत्वहीन तथा द्वितीय स्तर का कारण बना दिया था। तुलनात्मक दृष्टिकोण से थान चुंग ने अपने नए शोध को 1977 ईस्वी को प्रकाशित पुस्तक चाइना एंड द ब्रेव न्यू वर्ल्ड तथा 1986 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक ट्राइटॉन एंड ड्रैगन में प्रस्तुत किया है। इस शोध कार्य में थान ने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रसार में अफीम के अत्यधिक महत्व को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से दर्शाया है। कैंटन यानी कुआंगचोउ व्यापार 1760 से 1840 ईस्वी के दौरान चीनी ब्रिटिश संपर्क में तनाव के स्रोतों के सुधात्मक विवेचना करते हुए वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अफीम युद्ध के नाम की संज्ञा सही है। पृष्ठ संख्या 34। विभिन्न कारणों के सम्मिलित प्रभाव ने युद्ध को भड़काया, अतः दोनों राष्ट्रों के बीच तनाव तथा संघर्ष के मुद्दों की विवेचना आवश्यक है। तनाव का एक क्षेत्र विदेशी व्यापारियों तथा उनकी गतिविधियों पर लगाए गए अनेकों नियंत्रण थे। अधिकतर टकराव का कारण कैंटन व्यापार प्रणाली थी। पुरातन चीन निवासी हान जाति मांचू शासकों को गैर चीनी समझते थे। मांचू सरकार इस बात से आशंकित थी कि कहीं हान विद्रोही। पृष्ठ संख्या 35। कैंटन व्यापार प्रणाली के विभिन्न प्रतिबंधों के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारियों को वर्ष में केवल अगस्त से मार्च के माह तक कुआंगचोउ में रहने दिया जाता था। इसके पश्चात वे मकाओ बंदरगाह वापस चले जाते थे, जो कि उनके लिए काफी असुविधाजनक था। उन्हें अपने परिवार अथवा स्त्रियों को कुआंगचोउ लाने की अनुमति नहीं थी। इस संदर्भ में श्रीमती बेयर्स के मामले का उल्लेख आवश्यक है। 1840 ईस्वी में घटी इस घटना ने आंग्ल चीनी संबंधों में तनाव उत्पन्न किए। श्रीमती बेयर्स ईस्ट इंडिया कंपनी की कुआंगचोउ समिति के अध्यक्ष की पत्नी थी। जब उन्हें कुआंगचोउ छोड़ देने के लिए कहा गया तो संबंध बिगड़े। विदेशी व्यापारी शस्त्र भी कुआंगचोउ नहीं ला सकते थे। पालकी जैसी कुर्सी सेडन चेयर की सवारी का उपयोग भी वे नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह विशेषाधिकार केवल विशिष्ट चीनियों के लिए ही उपलब्ध था। इन प्रतिबंधों को अंग्रेज सामाजिक दृष्टिकोण से अपमानजनक मानते थे। व्यापार तथा अन्य गतिविधियों पर विभिन्न प्रतिबंध अंग्रेज व्यापारियों को मान्य नहीं थे। वास्तव में 18वीं तथा 19वीं शताब्दियां वह समय था जबकि अंग्रेज शक्ति एवं अभिमान से भरे हुए थे। वे प्रतिबंधों के विरुद्ध बलपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे जिससे संबंध बिगड़ जाते थे। 1820 ईस्वी में प्रकाशित बंगाल वाणिज्य रिपोर्ट में एक ब्रिटिश अफसर की एक टिप्पणी में चीनियों के साथ व्यवहार में अंग्रेज द्वारा अपनाए गए संयम को इस प्रकार से व्यक्त किया है, कब तक अंग्रेज झुकते रहेंगे अपमान अन्याय तथा शोषण को सहन करते रहेंगे ऐसी जाति से। हाउ लॉन्ग आर इंग्लिश मैन टू सकम, हाउ लॉन्ग आर दे टू सबमिट टू इंसल्ट इंसिस्ट इनजस्टिस एंड एक्सटोर्शन फ्रॉम सच ए रैश चाइनीज। 1830 ईस्वी के बेयर्स मामले के दौरान अंग्रेज चीनियों के साथ मुठभेड़ के लिए तैयार थे। इसके पश्चात नेपियर कांड, लेडी ह्यूज का मामला, बामपुआ में नेपच्यून दंगे तथा रॉयल सारोलेट की घटनाओं ने समय समय पर इन दोनों राष्ट्रों के संबंधों में काफी तनाव उत्पन्न किया। कभी कभी फौजी मुठभेड़ के लिए तत्परता की नौबत आ जाती थी तथा अंग्रेज चीनियों की फौजी तैयारी तथा शक्ति को भांप गए। पृष्ठ संख्या 36 को हांग के द्वारा सभी प्रकार के आर्थिक शोषण के होते हुए भी व्यापार से पाश्चात्य व्यापारियों को काफी लाभ थे, परंतु इन आर्थिक लाभों का कानूनीकरण नहीं किया जा सकता था क्योंकि चीन एक ब्रिटिश उपनिवेश नहीं था। जैसे भारत में पलासी के युद्ध से पूर्व उनके पास एक पैर जमाने का क्षेत्र था, इसी प्रकार की आदर्शपूर्ण स्थिति वे चीन में भी चाहते थे। कुछ समय तक अंग्रेज की दृष्टि मकाओ बंदरगाहों पर थी, परंतु 1793 में मैकार्टनी तथा 1816 में एमहर्स्ट के मिशन दलों ने व्यापार के लिए चुसान, निंगपो तथा थियनचिन को खोलने की मांग की। मांचू के कारण अंग्रेज यह समझते थे उन्हें चीनियों से अनुकूल व्यापार तथा लाभ प्राप्त हो। जब उनकी ओर से इस विषय में कूटनीतिक प्रयास असफल हो गए तो सैनिक प्रयास ही दूसरा मार्ग शेष रह गया था। अस्थायी कूटनीतिक संबंधों के अभाव के कारण दोनों देश युद्ध के अधिक निकट हो गए। थान चुंग ने अपने शोध में उपरोक्त मतों का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। उन्होंने यह दर्शाने की चेष्टा की है कि अंग्रेजों ने इस प्रकार के एक पैर जमाने वाले क्षेत्र की प्राप्ति को सर्वोच्च महत्व कभी भी प्रदान नहीं किया। उनके अनुसार यह कहना कि युद्ध के दौरान तथा इसके पश्चात चीन को बलपूर्वक हांगकांग को पट्टे पर सौंप देने के लिए बाध्य करना ताकि चीन को व्यापार के लिए खोला जा सके, युद्ध के कारण की गलत अभिव्यक्ति होगी। थान अपनी बहस को आगे बढ़ाते हुए यह कहते हैं कि कैंटन व्यापार के किसी भी चरण के दौरान अंग्रेजों ने बलपूर्ण तरीके से हांगकांग या अन्य किसी अड्डे पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया। उनका कहना है कि चीन पहले से ही इतना खुला हुआ था कि व्यापार से अंग्रेज काफी लाभ प्राप्त कर रहे थे। इस कारण पैर जमाने का क्षेत्र ऐच्छिक तो था परंतु परम आवश्यक नहीं था। इस संदर्भ में लिंकिंग से व्यापार का उल्लेख आवश्यक हो जाता है क्योंकि अंग्रेज व्यापारी इस व्यापार से कैंटन व्यापार के सभी शोषणों तथा प्रतिबंधों से मुक्त हो गए थे। मकाओ के निकट लिंकिंग द्वीप स्थित था। कुआंगचोउ तथा मकाओ तक पहुंचने के लिए लिंकिंग से प्रवेश का मार्ग था। इससे भारत से आने वाली अफीम की तस्करी अत्यंत सुगम हो गई। लिंकिंग द्वीप के आसपास जहाज लंगर डाले रहते थे। निजी व्यापारी इस अफीम को इन जहाजों में जमा कर देते थे। वहां से चीनी अफीम व्यापारी अफीम को हथियारबंद छोटी छोटी तेज गति से चलने वाली नावों में ले जाते थे। अफीम उन व्यापारियों तक पहुंचा दी जाती थी जो कि चीनी तट के विभिन्न स्थलों पर इसकी प्रतीक्षा में रहते थे। वहां से वे अफीम को चीन के आंतरिक हिस्सों में वितरित कर देते थे।